अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने इंट्रोडक्शन सुना इस सीरीज़ का, जन्नत और जहन्नम के पुरफरीब रास्ते। इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ में जितने भी वाक़यात आपके सामने रखे जाएंगे वो हदीस की रोशनी में हैं, और उनसे हमें यही सीखना है कि क्या वो चीज़ें हैं जो जन्नत की तरफ ले जाती हैं, और वो कौन से अमल हैं जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक सख्त, कठिन, खतरनाक रास्ते पर चल रही थी जिस पर जगह जगह रुकावटें, मुश्किलात और मसाइल थे। मैं फूंक फूंक के कदम रख रही थी क्योंकि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं था। मैं अपना हर कदम एहतियात से आगे बढ़ा रही थी, और मुश्किल सफर तवील भी ज्यादा लगता है। ये सफर भी ऐसा था जैसे कभी खत्म नहीं होने का, मगर मुझे चलना है और चलते ही जाना है। बहुत दूर एक आलीशान मंजिल नजर आ रही है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद दे रही है। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ इसके दोनों अतराफ में मुझे कुछ मनाजिर दिखाई दे रहे हैं जो जमीन पर बसने वालों के हैं। ये सब लोग इसी रास्ते के मुसाफिर हैं। ये सब लोग मेरे साथ ही इस रास्ते पर रवां दवां हैं, मगर मंजिल अभी उनकी नज़रों से ओझल है। हाँ, सिर्फ एक यकीन है जो उनको चला रहा है, और उनका यही यकीन तो काबिले कदर है अल्लाह ताला की नज़रों में, कि ये ऐसी मंजिल के राही हैं जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, सिर्फ इसके बारे में सुना है, मगर उनका ईमान इतना पुख्ता है कि जैसे देख चुके हैं। अचानक एक दर्दनाक आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने रास्ते के एक जानिब देखा तो एक घर में एक शख्स बिस्तर पर पड़ा था। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार थे, मगर जुबान से हर कुछ देर बाद एक ही बात निकल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने देखा आंसू इसकी आंखों से निकलकर उसके तकिए को भिगो रहे हैं। यूं लगता है ये बहुत तकलीफ में है। इतने में दरवाजा खुलता है। एक तकरीबन उसी की उम्र का शख्स अंदर दाखिल होता है और आहिस्ता से आकर बिस्तर के करीब खड़े होकर कहता है, अस्सलाम वालेकुम। बिस्तर पर पड़ा हुआ शख्स आहिस्ता से कहता है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अहमद? बीमार शख्स बावजूद तकलीफ के कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाला शख्स करीब बैठ गया और साथ बैठी हुई औरत से कहने लगा, बाजी क्या कहते हैं डॉक्टर? वो डुबडुबाती आवाज में बोली, भाईजान डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब तो इनका खाना पीना भी कम हो गया। कल से आज तक इन्होंने कुछ नहीं खाया। वो बोल रही थी और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो साफ जाहिर करता था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मगर फिर एकदम हौसले के साथ बोली, लेकिन भाई अल्लाह तो है ना, वो हमारा सहारा है, हमारा उस पे भरोसा है, वो हमें कभी मायूस नहीं करेगा। मैंने देखा इसी कमरे में कुछ फरिश्ते बैठे हैं जिनके हाथों में सुनहरी किताबें हैं, वो तेजी से कुछ लिख रहे हैं। मैंने सोचा ये क्या लिख रहे होंगे। मरीज के पास बैठे हुए फरिश्ते अपनी किताबों से तो लगता था आज सब गुनाह मिटा छोड़ेंगे, और जो औरत के पास बैठे हुए थे वो भी मुसलसल कुछ मिटाए जा रहे थे, और जो इयादत करने वाले के पास बैठे हुए थे उन्होंने अपने हाथ उठा रखे थे, और इस इयादत करने वाले के लिए खैर और भलाई की दुआएं कर रहे थे। वो मुसलसल उसके लिए दुआएं करते चले जा रहे थे। आने वाला शख्स अपनी बहन को तसलियां दिए जा रहा था, उसका हौसला बढ़ाए जा रहा था, और उधर फरिश्ते उसके लिए दुआएं किए जा रहे थे। मैंने औरत से कहा, बहन आप दुखी ना हो, ये देख रही हैं आपके सब्र की वजह से कैसे आपके गुनाह धुल रहे हैं, मगर उसको मेरी आवाज कहाँ पहुंच सकती थी। मैंने उसको छोड़ के मरीज को दिलासा दिलाना चाहा। भाई आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान हमेशा आजमाई से दो चार रहता है, हत्ता कि वो वक्त आता है कि वो रूए जमीन पर चलता है और उसके बदन पर गुनाह का एक दाग भी बाकी नहीं रहता। मगर वो भी मेरी आवाज़ सुनने के काबिल नहीं थे। औरत अपने भाई से कहने लगी, भाई अब तो अगले महीने 2 साल हो जाएंगे इनको इसी तरह बिस्तर पे पड़े हुए, हमारे लिए तो दिन महीने साल सब बराबर हो चुके, ना दिन का पता चलता है ना रात का। मगर अहमद की जुबान पर सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह के और कुछ नहीं होता, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। हालांकि अभी तो इनकी उम्र भी कुछ नहीं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी इनके सर पे बाकी हैं, मगर कैसा अल्लाह ने इनके दिल को सुकून दिया। मैं देख रही थी जैसे जैसे वो बोल रही थी, उसके करीब बैठे फरिश्ते जोर और शोर से उसकी बातें लिखते जा रहे थे। यूं लगता था वो इसकी नेकियों से किताबें भरते जा रहे हैं। इतने में एकदम बहुत सारे नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते कमरे में जमा होने लगे। इतने फरिश्ते तो मैंने कभी भी इकट्ठे नहीं देखे थे। वो आकर अहमद के आसपास बैठ गए। औरत मुसलसल बोल रही थी, अभी भी इनको नमाजों की इतनी फिक्र है, वुजू करवाने का कहते हैं, फिर लेटे लेटे नमाज पढ़ते हैं, और सिर्फ नमाज ही नहीं, इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ना, अजकार पढ़ना, और वो कहते कहते रुक गई। अहमद की सांसें उखड़ रही थी और मैं देख रही थी कि दूर उस रास्ते के आखिर में जन्नत में यूं लगता था किसी के आने की तैयारियां चल रही हैं। सोने और चांदी की ईंटों से कोई महल बन रहा था जो इन्होंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लगता है एक इस बीमार शख्स का महल है और दूसरा इसकी बीवी के सबर का अजर है। नूरानी चेहरे वाले फरिश्तों ने अपना काम शुरू कर दिया। औरत मुसलसल रोई जा रही थी और शौहर का हाथ पकड़कर कभी चूमती कभी सीने से लगाती। ऐसे में दरवाजा जोर से खुला और 2-3 बच्चे दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और आते ही बाप की टांगों से चिमट गए। इधर उन पर ये मुसीबत टूट रही थी और उधर मैं अपने सामने देख रही थी कैसे फरिश्ते उनके लिए इनामात तैयार कर रहे हैं जन्नत में। वो दूर जन्नत के मनाजिर मुझे नजर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, अरे ये गम तो चंद दिन का है, वो देखो तुम्हारे लिए हमेशा की खुशियां तैयार हो रही हैं, तुम सब वहां इकट्ठे हो जाओगे। मगर मेरी आवाज उन तक कहाँ पहुंच रही थी। मेरे आंसू निकल आए उन बच्चों को देखकर, अभी ये कितने छोटे हैं, मगर जब सामने देखती तो लगता था ये दुख तो कुछ भी नहीं, यहां आगे इनको अबदी खुशियां मिलने वाली। मैं आगे बढ़ गई, एक गरजदार आवाज ने मुझे चौंका दिया। एक घर में एक शख्स गालियां दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। यूं लगता था इस औरत की जुबान पर तो जैसे कोई ताला लगा हुआ है। हाँ, उसके आंसू टपटप गिर रहे थे। आदमी गुस्से में चीखता हुआ पैर पटकता हुआ कमरे से चला गया। औरत मुसलसल रो रही थी। उसके करीब पड़ा फोन बजने लगा। उसने आहिस्ता से फोन उठाया और सलाम किया। उसकी भराई हुई आवाज सुनकर सामने से किसी लड़की ने कहा, आप ही फिर शौकत भाई आपसे लड़े हैं। औरत खामोश रही। कितनी बार आपसे कहा है ये आदमी इस काबिल नहीं है, मगर आपको तो पता नहीं सब्र की कौन सी गोली मिली हुई है, क्या आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने देखा कुछ फरिश्ते इस औरत के पास बैठे जल्दी जल्दी इसके सब्र को लिख रहे हैं। औरत फिर बोली, नहीं नाजिया, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। अगर लड़ते हैं तो इनमें कुछ खूबियां भी तो हैं, और कई खूबियां हैं। मेरा ये सब्र एक दिन जरूर काम आएगा। आगे से आवाज आई, बस फिर तुम उस दिन का इंतजार करती रहना, खुदा हाफिज। किसी ने फोन आगे से बंद कर दिया। इस औरत ने हाथ उठा के दुआएं करनी शुरू कर दी, ए अल्लाह मेरे दिन भी बदल देना, मैं तुझसे नाउम्मीद नहीं। मैंने आहिस्ता से उसे कहा, ए बहन, हाँ आपके सब्र का फल आपको जरूर मिलेगा, आपका अजर आप देख लेंगी तो हैरान हो जाएंगी। उसके पास बैठे फरिश्ते उसके सब्र की दास्तान को सुनहरे हरूफ से लिख रहे थे, और वो दूर मुझे जन्नत में नजर आ रहा था, कैसे बेहिसाब अजर इसके लिए तैयार हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, वो मेरी आवाज नहीं सुन सकती थी, मगर मैं जानती थी इसका ये सब्र कभी जाया नहीं जाएगा। मैं आगे बढ़ी, एक टेंट में मुझे चंद मासूम से बच्चे बैठे हुए नजर आए। सर्दी शदीद थी, वो ठिठर रहे थे, उनके चेहरे भूख से कुमलाए हुए थे, होंठ खुश्क थे, यूं लगता था कई दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। और कहीं दूर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब ये आवाज आती तो ये बच्चे सहम जाते। इतने में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसने बच्चों के आगे कपड़ा खोल के बिछाया जिसमें रोटी के चंद टुकड़े थे और साथ पानी की कुछ बोतलें थी। बच्चे जल्दी जल्दी रोटी उठा के खाने लगे। मैंने देखा वो फरिश्ते जो उस आदमी के साथ हैं, वो एक किताब में ऐसे कुछ लिख रहे हैं तेजी से, जैसे आज लिख लिख के वो इस सारी किताब को भर देंगे। उसका ये अमल अल्लाह ताला को कितना पसंद आया होगा जो ये फरिश्ते इस तरह लिखे जा रहे हैं। एक बच्चे ने कहा, अंकल मेरी अम्मी कहाँ हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं, ये जंग कब खत्म होगी। वो शख्स गोया लाजवाब था। बच्चा दोबारा बोला, ये सब क्यों हो रहा है। आदमी इस बार चुप ना रहा और बोला, बेटा इसमें भी कोई बेहतरी है। 10-11 साल के बच्चे को तो समझ ना आई, मगर मैं देख रही थी कि वो यहाँ कितनी तकलीफ में और वहां जन्नत में इनके लिए बाग तैयार हो रहे हैं, नेमते तैयार हो रही हैं। मुसलसल फरिश्ते उनके लिए इनामात को तैयार कर रहे हैं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, वाकई अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। बंदा तो सोचता है ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, मगर अल्लाह ताला जानता है कि ये क्यों हो रहा है और इसमें इस बंदे की कितनी भलाई है। ये रास्ता कितना गम का रास्ता है, इसमें कितनी परेशानी है, जुदाइयां हैं, कितने आंसू हैं। मैं चली जा रही थी और सोचती जा रही थी कितना मुश्किल रास्ता है, मगर जब सामने नजर उठा के देखती हर जन्नत के बागात नजर आते, उसके बड़े बड़े दरवाजे नजर आते जिनकी मसाफत 40 साल की, जिनमें ऐसे खूबसूरत रहा सोने के तने, जिसके जिसके महल्लात ऐसे कि एक ईंट सोने की और एक चांदी की, जहां मुसलसल फरिश्ते काम में लगे हुए इन सब लोगों के लिए। काश ये लोग देख सकते होते, मगर ये देख नहीं सकते। इनको ये बातें शायद कभी कानों से टकराई तो हूं, हदीस की सूरत में, कुरान की आयात की सूरत में, मगर इन्होंने आंखों से नहीं देखा वो मंजर जो सामने मैं देख रही थी। अगर ये लोग एक बार इस रास्ते के आखिर में मिलने वाली जन्नत को देख लें तो इनके आंसू मुस्कुराहटों में बदल जाएं, इनके दुख की जगह शुक्र आ जाए, क्योंकि ये महंगा सौदा नहीं। अगर इस गम के सहने पर इतनी खूबसूरत जन्नत मिल सकती है जो बाकी रहने वाली, जो बेहतर है इस दुनिया से, तो ये घाटे का सौदा नहीं। इस रास्ते में चंद दिन के दुख तो हो सकते हैं, मगर हमेशा के नहीं, और आगे हमेशा की खुशियां, कभी कोई गम नहीं। मगर इंसान कितना थोड़ा और बेसब्रा हो जाता है, काश वो अल्लाह के वादों पर यकीन करके देख ले तो कभी ये अपनी जिंदगी के गमों पर ऐसे दुखी ना हो। मैं सोचती चली जा रही थी और चलती जा रही थी, एक एक वाक्या मेरे दिल पे नक्श था। हाँ, ये गम जरूर हैं, ये बच्चे मासूम, उस औरत का क्या कसूर? एक बेवा हो गई, एक जुल्म सह रही, और कुछ बच्चे बेकसूर और मासूम। मगर अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करने वाला नहीं, काश ये लोग जान लें। यहाँ तक आज की हमारा पहला एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह ताला कल कुछ और स्टोरीज़ के साथ आपके सामने आएंगे, और ये स्टोरीज़ इसीलिए हैं ताकि हम इनसे इबरत लें और इनसे कुछ सीखें अपने लिए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।